ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम षष्ठम स्कंध अध्याय 17 श्लोक संख्या 9 है ना। श्री शुक उवाच। भगवान् अपि तत्सुत्वा प्रहस्य यगादधि नृप तुष्णीं बभूव सदसि सम्याश्च तदनुव्रता। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा भगवान शिव अपि भी तथा वह श्रुत्वा सुनकर परहस्य हंसकर अगाध बुद्धिमान वाला नृपा हे राजा तृष्णिम चुप बभुआ हो गया। सदसी सभा में सभ्या सारे सदस्यों ने च तथा तत् अनुव्रता शिव जी का अनुसरण किया और चुप रहे। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री सुखदेव स्वामी ने आगे कहा हे राजा चित्रकेतु के वचन सुनकर परम बलशाली अगाध ज्ञानवान देवाधिदेव शिव केवल हंस दिए और चुप रहे। सभा के समस्त सदस्यों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया और कुछ नहीं कहा। तात्पर्य चित्रकेतु के द्वारा शिव जी की आलोचना उद्देश्य रहस्यमय है और सामान्य व्यक्ति की समझ के परे हैं। तो भी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रकार टिप्पणी की है परम वैष्णव एवं परम शक्तिशाली देवता होने के कारण शिव जी अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने में समर्थ हैं। यद्यपि वे ब्रह्म स्वरूप से सामान्य व्यक्ति का सा आचरण कर रहे थे और शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे थे, किंतु ऐसे कार्यों से उनकी उच्च स्थिति में कोई कमी नहीं आती। कठिनाई यही है कि सामान्य व्यक्ति उनके इस आचरण को देखकर उनका अनुकरण कर सकता है और कर सकता है, जैसा कि भगवद गीता के 3:29 में कहा गया है, यदा चरति श्रेष्ठ तत्तत्तेव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य पुरुष उसका अनुसरण करते हैं। वह पुरुष अपने विलक्षण कार्यों से जो आदर्श स्थापित कर देता है, संपूर्ण विश्व उसी के अनुसरण कार्य करता है। सामान्य व्यक्ति भी दक्ष की भांति जिसने आलोचना का फल भोगा, वह शिव जी की आलोचना करके कष्ट का भागी हो सकता है। राजा चित्रकेतु चाहते थे कि शिव जी अपना बाह्य व्यवहार बंद कर दें, ताकि दूसरे लोगों आलोचना न करें और अपराध के भागी न हों। यदि कोई यह सोचता है कि भगवान विष्णु ही पूर्ण हैं और अन्य सभी देवता शिव जी के समान अनुचित कृत्य करते रहें, तो वह अपराधी है। यह सब सोच कर ही चित्रकेतु शिव जी के प्रति इतने निष्ठुर हो सके। शिव जी परम ज्ञानी होने के कारण चित्रकेतु के मंतव्य को समझ गए, अतः वे तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए, अपितु हंसकर शांत बने रहे। शिव जी को घेर कर बैठे हुए सभा के सदस्य भी चित्रकेतु के मंतव्य को समझ गए, फलतः शिव जी के व्यवहार की प्रतिक्रिया में उन्हें कोई प्रतिवाद नहीं किया और वे भी शांत रहे। यदि सभा के सदस्यों ने यह सोचा होता कि चित्रकेतु ने शिव जी का अपमान किया है, तो वे अपने कानों को बंद करके अवश्य ही उठकर चले जाते वहां से। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्निर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम बहुत सुंदर प्रसंग है। सुखदेव गोस्वामी इस प्रसंग को परीक्षित जी से कह रहे हैं। महाराज परीक्षित जो पांडवों के मान को आदर को बढ़ाने वाले हैं, उनका जो पांडवों का जो सिस्टम था भक्ति का, उस भक्ति को आगे ले जाने वाले महाराज परीक्षित अनशन व्रत धारण करके आसन पर विद्यमान हैं और सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया है, उसका उत्तर दे रहे हैं। आज का जो प्रसंग है भगवान शिव के विषय में वर्णन किया है। भगवान शिव अपने आचरण से भी हम सब छोटे मोटे भक्तों की शिक्षा प्रदान करते हैं, जैसे बड़े लोग करते हैं उसी प्रकार से छोटे लोगों को आचरण करना चाहिए। भगवान शिव, शिव माने कल्याण भी होता है। शिव जी सबका कल्याण चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं। भगवान शिव परम वैष्णव हैं, विद्वान हैं, भगवान के परम भक्त हैं, आचार्य हैं, द्वादश महाजन में एक महाजन भी है। बारह महाजन का मतलब महान जो संत भक्त हैं, जो भागवत धर्म को ठीक ठीक से समझते हैं, भागवत धर्म को जो ठीक से अपने जीवन के आचरण में उतारते हैं, उसे महाभागवत कहते हैं। उसमें से भगवान शिव भी हैं एक। भगवान शिव आचार्य हैं, जगत गुरु हैं। भगवान शिव के जीवन में बहुत कुछ कार्य नहीं है, घर मकान आश्रम के चक्कर में कभी नहीं पड़े भगवान शिव। हालांकि गृहस्थ हैं, बाल बच्चे भी हैं उनके, हर बाल बच्चे का पति पत्नी का सबका व्हीकल भी है, सबका गाड़ी भी है। भगवान शिव का गाड़ी क्या है? नंदी है, बैल है, और जो बैल है वो धर्म का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है बैल। माता जी की सवारी क्या है? शेर, दुर्गा जी। अब बैल शेर देखो, पति जी का जो वाहन है वो बैल है और माता जी का जो वाहन है वो शेर है। अब बताओ बैल को जब शेर देख ले तो, लेकिन कभी तकरार नहीं हुआ वहां पर, कभी झगड़ा नहीं हुआ वहां। पार्किंग एक ही था, एक ही गैरेज में सब पार्क हो जाते थे, सब अलग अलग नहीं होते थे कभी। गणेश जी का सवारी क्या है? अब चूहा को जब शेर देख ले तो खा जाएगा ना। और कार्तिकीय का सवारी क्या है? मोर है। ये सभी अपोजिट है, लेकिन एक ही पार्क में, एक ही गैरेज में सभी पार्क हो जाते हैं। कोई किसी से मतभेद नहीं होता है, आपस में किसी प्रकार का तकरार नहीं है, किसी प्रकार की किसी का आलोचना नहीं है इसमें। इसका कारण यह है कि भगवान शिव के घर में जितने उनके सदस्य हैं, भगवान शिव वे सभी भगवान के परम भक्त हैं। यदि जीवन में भक्ति आ जाए तो फिर जीव मान अपमान से मुक्त हो जाता है। यस्या वै सूर्य माला नाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुद पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। भक्ति महारानी यदि हृदय में आकर के विद्यमान हो जाए तो आप हमारे सबके हृदय में जो शोक है, कोई वस्तु छूट जाए तभी प्राप्त हो जाए तभी शोक उत्पन्न हो जाता है, अत्यधिक धन हो जाए तो शोक होता है, इसकी रक्षा कैसे करूं, और यदि नहीं मिलता है तभी भी शोक होता है कि प्राप्त कैसे करूं, दोनों अवस्था में शोक है अंदर में, चिंता है अंदर में, मोह भी है, मोह माने अज्ञान भी है। शोक मोह भयापहा कैसे, कब, जब भक्ति महारानी आकर के विद्यमान हो जाती हैं तब। भगवान शिव का दो ही काम है जीवन में, तव नाम जपामि नमामि हरि। भगवान को जहां देखते हैं वहीं प्रणाम करते हैं और निरंतर भगवान के नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। भगवान के जप करने से यही कारण है कि भगवान के दर्शन से, उनके जप करने से, उनके साथ बैठने से, उनका चिंतन मनन करने से भगवान शिव शांत भाव से बैठे हैं चित्रकेतु के अपमानित करने के बाद भी, और एक दो व्यक्ति के बीच में अपमान नहीं किया चित्रकेतु महाराज ने, सभा लगी हुई थी, देवताओं की सभा में कथा कर रहे थे, सभी देवता लोग शांत भाव से बैठे थे। भगवान शिव हैं, मन में किसी प्रकार की कामना नहीं है, भौतिक कोई विषय वासना नहीं है मन में, स्वाभाविक है, घर नहीं है, मकान नहीं है, वृक्षों के नीचे ही पति पत्नी विराजते हैं और निरंतर कैलाश पर कथा चलती रहती है भगवान शिव का। पार्वती जी श्रोता हैं और भगवान शिव वक्ता हैं। पार्वती जी निरंतर भगवान के विषय में कथा सुनना चाहती हैं, श्रवण करना चाहती हैं, भगवान के लीला को जानना चाहती हैं। भगवान शिव अनेक प्रकार के उदाहरण के द्वारा, अनेक प्रकार के शास्त्रों के द्वारा उनको समझा रहे हैं। यही जीवन है वैष्णव का। यदि आप, हम सब, कोई भी यदि घर छोड़ करके हम सब आ गए हैं और मन में यदि इच्छा है कि नहीं मुझे अच्छा वैष्णव बनना है, अच्छा संत बनना है, तो भगवान शिव का ये आचरण जरूर जीवन में उतार लेना चाहिए, और कुछ काम नहीं होना चाहिए। प्रसाद कब मिलेगा कोई ठिकाना नहीं, यहां तो निश्चित है ना कि 9 बजे मिल जाएगा, यदि 9 बजे नहीं मिलेगा तो क्या होगा उसके आगे सब जानते ही आप सब। 9 बजे मिले वहां कोई निश्चित नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई मकान नहीं है, किसी प्रकार के जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी एक ही है कि मुझे भगवान के साथ बैठना है भागवत जी के माध्यम से। अपार जीवन में सहन शक्ति है। कैसा सहन शक्ति है, जैसे वृक्ष, वृक्ष देखिए महाप्रभु इसका उदाहरण देते हैं, सहिष्णु नाम तृणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णु नाम। सहिष्णु माने तरोरिव का मतलब होता है वृक्ष, और सहिष्णु का मतलब होता है सहन शक्ति, विनम्रता, वो सहिष्णु है। कहते हैं ना किसी को विषय में, वो भक्त बड़ा सहिष्णु है, बड़ा शांत रहता है, यही हमारी शोभा है, यही वैष्णव धर्म है, यही वैष्णव आचार्य है, किसी के बात को सहन कर लेना, बर्दाश्त कर लेना, सुन लेना। काम का हो तो अंदर में फिट कर लो, काम का न हो तो उसको बाहर निकाल के डिलीट कर दो, समाप्त कर दीजिए उसे, क्योंकि अंदर रखेंगे तो चौक हो सकता है ना, स्टक हो सकता है। आपका मोबाइल है, मोबाइल में यदि बहुत मैसेज हो, बहुत प्रकार के मैसेज आया हो और आप उसको डिलीट ना करो तो दो चार दिन में वो चौक हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। उसी प्रकार दिमाग में वही वस्तु, वही सूत्र, वही भक्ति जीवन में रखना है जो हमें काम देता है। अनेक प्रकार के विषयों में चित्त को भटकाना नहीं है। अनेक चित्त विभ्रांत मोह जाल समावृत, जोगेश्वर गीता में कहते हैं, अनेक प्रकार के जिनका चित्त अनेक वस्तुओं में जिनका फंसा हुआ है, भटक रहा है, वह व्यक्ति मोह के जाल में निरंतर बंधा रहता है, फंसा रहता है, रोता है, चिल्लाता है। भगवान शिव अपने आचरण से शिक्षा देते हैं कि संत के जीवन में कैसा सहन शक्ति होना चाहिए। गृहस्थ होने के बाद भी मन में कोई कामना नहीं, कोई विषय नहीं है, अन्यत्र ग्रंथों में कथा ऐसी है कि देवता लोग कथा सुन रहे थे, पार्वती जी वाम भाग में बैठी थी, सभी देवता लोग शांत भाव से सुन रहे थे, किसी प्रकार के मन में ऐसा कुछ ऐसा दोष बुद्धि नहीं था भगवान शिव के प्रति। भगवान शिव हैं, महाभागवत हैं, जीवन में किसी प्रकार का दोष नहीं है, विकृतियां नहीं हैं। पार्वती जी बैठी हैं लेकिन कोई चिंता नहीं है, सभी देवता बैठे हैं। और ये महाराज चित्रकेतु घूमते घूमते आए और भगवान शिव को लगे बोलने, केवल बोला नहीं, गाली भी दिया। मैंने इसे कथा सुना है, श्रीपाद राधा गोविंद महाराज जी ने एक बार कथा में बता रहे थे कि चित्रकेतु जब आए तो चित्रकेतु ने सीधा शंकर जी को देख करके मन खराब किया और कहा कि देखो कितना निर्लज्ज है ये, लज्जाहीन है ये, इतने बड़े बड़े देवता लोग बैठे हैं, अरे थोड़ा जीवन में आचरण भी होना चाहिए। अनेक प्रकार के शब्दों से घायल किया, व्यथित किया, अनेक प्रकार की गाली दिया, बहुत कठोर शब्दों का उपयोग किया, लेकिन भगवान शिव शांत भाव से बैठे रहे। यही वैष्णव का लक्षण है, इसी को वैष्णव कहते हैं। वृक्ष को देखते हैं ना, आप जितना मर्जी गर्मी से धूप से चले जाओ, उसके पास आपका प्रतिकार नहीं करता है, विरोध नहीं करता है कि मैं धूप में खड़ा हूं, तुम मेरे पास आ गए हो, यहां से चले जाओ, नहीं। शांत जैसा है वैसा ही खड़ा रहता है। और जीव जब धूप से बिल्कुल परेशान होकर के, गर्मी से जब बिल्कुल पीड़ित हो जाता है, परेशान हो जाता है, जब वृक्ष के पास जाता है तो अपने पखड़ियों से उसको हवा देकर के ठंडा कर देता है। ये वैष्णव का ऐसा गुण होना चाहिए, और यह गुण केवल भक्ति से आ सकता है, और कोई उपाय है नहीं, केवल भक्ति से। यदि फल का वृक्ष हो, किसी फ्रूट का वृक्ष हो, यदि आपका शरीर ठंडा हो गया है तो उठा करके उस पर पत्थर मारेंगे ना, तो उधर से वो आपको फल प्रदान करता है वो। और हम लोगों को कोई गाली देगा तो क्या प्रदान करेंगे, मारने का शक्ति ना, दो चार गाली तो जरूर दे देंगे उसको। फल प्रदान करता है, फल दे देता है, लो खाओ। पानी के बिना, जल के बिना सूख जाता है, लेकिन जल की इच्छा नहीं रखता है कि आप मेरे छाया में आए हो, मैंने आपको फल दिया है और आप मुझे पानी दीजिए, ऐसा कभी मन में इच्छा नहीं करता है। इसलिए महाप्रभु ने इन शब्दों को बहुत जोर दिया है, संत को तृण के समान होना चाहिए, तृण से भी अपने जीवन को तुच्छ समझे, विनम्रता होनी चाहिए। और विनम्रता केवल बनावटी नहीं, भगवान शिव के विषय में तात्पर्य में लिखा है कि भगवान शिव चुपचाप शांत इसलिए नहीं बैठे कि वो कमजोर थे अथवा देवता लोग बैठे थे, इसलिए शांत बैठे थे कि वो भगवान के भक्त हैं। जीवन में भक्ति है, ज्ञानवान बुद्धिमान शक्तिशाली होने के बाद भी चित्रकेतु के निंदा को सुनते रहे, हमेशा सुनते रहे। इसलिए इनके नाम के पीछे भगवान शब्द लगाया हुआ है, भगवान शिव, भगवान शिव। भगवान को भी लोग अनेक प्रकार के गालियां देते हैं, कभी कभी तो लोग गाली देते देते मुख सूखता है तो पानी पी के भी गाली देते हैं, जैसे शिशुपाल ने सैकड़ों भगवान को गाली दे दिया, लेकिन भगवान तो संताकार हैं, शांत भाव से बैठे हैं। प्रभु भागवत धर्म को जीवन में धीरे धीरे कर्मशः हम सबको अपने आचरण में इंद्रियों में उतारना चाहिए, अपने इंद्रियों में लेना चाहिए, इसे इसको पीना चाहिए ठीक से। जैसे आप कभी कभी गोपी का, गोपी शब्द का अर्थ सुने होंगे, संतों से कहते हैं गो माने इंद्रियां और पी माने पीना। जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से भगवान के लीला को कथा को पी करके पचार लिया है वही गोपी है, वो गोपी है। गो माने इंद्रियां, गो माने गाय, गो माने भूमि भी होता है, लेकिन यहां गो माने इंद्रियां है। ये भागवत जी केवल हम आए कथा कर दें या सुन लें या पढ़ लें, ये बड़ी अच्छी बात है, इसकी कोई निंदा नहीं है, लेकिन यदि हम इसको आचरण में उतारते हैं एक एक शब्द को, जैसे आज की कथा है, भगवान शिव शांत भाव से बैठे हैं, गाली सुनने के बाद भी बैठे हैं, वहां से उठेंगे तो प्रसाद भोजन कहाँ मिलेगा कोई पता नहीं, फिर भी शांत है, किसी प्रकार के मन में उद्वेग नहीं है। बारिश होगी तो कहाँ छुपना है, ठंडी पड़ेगी तो कहाँ आर लेना है, कैलाश पर बैठे हैं, शरीर से परे हैं, शरीर पर मान अपमान लग जाए उसका कोई चिंता नहीं है, हम शरीर नहीं है, यही तो प्रभुपाद जी बताते हैं। भाई कोई आपको यदि गाली देता है तो शरीर को गाली दे रहा है, कोई अपमानित किया तो शरीर को अपमानित किया, कोई मान आदर रिस्पेक्ट दिया तो शरीर को दिया, जो शरीर के अंदर देह के अंदर जो देही बैठा है उसको तो इस सब की आवश्यकता है नहीं, न उसको मान लगता है, न अपमान लगता है, न भूख लगता है, न प्यास लगता है, न सर्दी लगती है, न गर्मी लगती है। अजो नित्यम शाश्वतम दिव्यम हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर से बिल्कुल अलग है, शरीर छूटने के बाद भी, रहने के बाद भी, बीमार होने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है उसका। ये अभ्यास करना चाहिए धीरे धीरे। हम ये नहीं कहते कि आज ही हो जाएगा या 20 साल 30 साल में हो जाएगा। संत महात्मा वैष्णव न जाने कितने जन्मों से लगे हुए हैं, तब जाकर के अभ्यास धीरे धीरे इंद्रियों में आता है। ये अभ्यास जरूर करना चाहिए, भक्ति का प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, हमें सहन शक्ति बहुत होना चाहिए जीवन में, सहन शक्ति आचरण में भी दिखना चाहिए, आपके व्यवहार में भी सहन शक्ति दिखना चाहिए, आपके इंद्रियों में भी, आंख में, आंख यदि आपका देखती है किसी को अथवा आपको कोई व्यक्ति दिखता है तो अगला व्यक्ति को देखने से समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं, इसमें संत की वृत्ति का प्रभाव ज्यादा है। या आपका यदि कोई दर्शन कर लेता है, दर्शन करने से दूर से उस व्यक्ति के अंदर यदि पवित्रता आने लगती है, पवित्रता प्रवेश कर जाता है उस व्यक्ति में, प्रभु का नाम लेने लगता है, उसका सर झुकने लगता है, तो समझो कि आध्यात्मिकता में उसका प्रवेश ज्यादा है। इंद्रियों में भागवत धर्म का आचरण होना चाहिए, आंख नम्न होना चाहिए, सर झुका होना चाहिए, प्रत्येक इंद्रियों से ऐसा लगे कि प्रभु के सेवा में वो लगी हुई है, ऐसा होना चाहिए। भगवान शिव अनेक प्रकार के अपमान सहन करने के बावजूद भी शांत भाव से बैठे रहे, और बैठे ही नहीं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि उन्होंने हंस दिया, यानी ध्यान ही नहीं दिया कि हमें किसी ने कुछ बोला भी है। ऐसे अनेक संत हैं भागवत जी में, जड भरत जी को देख लीजिए, उनके जीवन में कंधे पर डोली है, राजा का वजन है, बोझा है, सामने कीड़ों को भी बचाना है, छोटे छोटे जीवों को भी बचा के चलना है, हमारे जीवन में किसी को कष्ट न हो जाए, किसी को दुख न हो, हमारे बोलने से चलने से किसी पर आपत्ति विपत्ति न आ जाए, उसका जीवन संकट में न आ जाए, उसका मन दुख न जाए, ये भी ध्यान रखना है। साथ में कंधे पर डोली है, छोटे छोटे जीवों को बचा के भी चलना है, और ऊपर से डोली में बैठने वाला राजा रहुगण नाना प्रकार के शब्दों से अपमानित कर रहा है, और शांत भाव से डोली को ढो रहे हैं। जब अपमान पर अपमान करते रहा, तब महाराज जड भरत जी ने सोचा कि यदि आज नहीं बोलूंगा तो फिर इसका उपकार नहीं हो सकता है, आखिर इसका वजन, आखिर इसका बोझा हमारे कंधे पर है, इसका उद्धार करना बहुत जरूरी है। तब डोली रख करके उन्होंने ऐसी सुंदर उपदेश दिया उस अवस्था में भी कि रहुगण का आंखें खुल गई, और वही सष्टांग दंडवत किया और पूछने लगा कि आप कौन हैं, या मैं जहां जा रहा हूं आप वही हैं, आप इस तीनों में से कौन हैं। जलभर जी ने कहा कि ये तुम्हारी दूसरी गलती है जो तुम पूछ रहे हो कि कौन हो। अरे जो तुम हो मैं हूं, जो तुम में है वो मेरे में भी है, जो तुम्हें बुद्धि प्रदान करता है मुझे भी वही प्रदान करता है। अवस्था कोई भी हो, कभी कभी हम आश्रम में रहते हैं, कभी कभी आश्रम के अधिकारी के बात समझ में नहीं आती है, या दिमाग में नहीं प्रवेश कर पाता है, या सेवा करने का विचार नहीं है, तो हम धीरे से उनका निंदा क्रिटिसाइज करने लगते हैं अपने से श्रेष्ठ भक्तों का। नहीं नहीं, हो सकता है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उनको मैं नहीं समझा पाता हूँ, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, यदि समय कोई स्थान पर किसी प्रकार की गड़बड़ी चालू है तो थोड़ा स्थानांतर कर दो, स्थान बदल दो, आधे घंटे घंटे में जब ठीक हो जाए फिर समझने की कोशिश करो, अपराध ना करो जीवन में। अपराध जो है भक्ति मार्ग में, आपके कोमल भक्ति मार्ग के बगीचे में मटवाला हाथी के जैसा ये वैष्णव अपराध निंदा है। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़ी या छिड़े जाए सुखी जाए पाटा। आपके कोमल बगीचे में, मुलायम बगीचे में भक्ति की बगीचा लगी हुई है, फल आने वाला ही है। उस बगीचे के रखवाली यदि हमने ठीक से नहीं किया, देखभाल ठीक से नहीं किया, और कहीं मटवाला हाथी प्रवेश कर गया उसमें, तो एक क्षण में वो मटवाला पागल हाथी आपके कोमल बगीचे को, भक्ति को नष्ट कर सकता है वो। इसलिए सावधान रहना चाहिए। भगवान शिव यहाँ पर शांत रह करके चित्रकेतु को अपमानित करने के बाद भी हंस दिया उन्होंने। सभी देवताओं ने भी यही आचरण किया, सबने कोई विरोध नहीं किया, बात सब समझ रहे थे, और चित्रकेतु का भी यह अभिप्राय नहीं था, लेकिन आचार्य हैं, संत हैं, बड़े देव देवताओं के भी देवता हैं आप, कम से कम आचरण में भी तो ठीक से होना चाहिए, ऐसा उद्देश्य नहीं था। चित्रकेतु के बात को सभी देवता लोग समझ रहे थे, लेकिन भगवान शिव के भी महिमा को लोग जान रहे थे। इसीलिए संत महात्मा वैष्णव का आचरण ज्यादा लेक्चर आप बहुत सुंदर गा लेते हो, बहुत सुंदर कथा कर लेते हो, बहुत सुंदर बोल लेते हो, इसका महिमा जरूर है, इसका महत्व है, इसकी निंदा नहीं है। सुंदर बोलना चाहिए, सुंदर गाना चाहिए, सुंदर बजाना चाहिए, सुंदर कथा आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि यदि आपके जीवन के आचरण में उतर गया हो, ये सबसे सुंदर बात है, सबसे बढ़िया बात है। भगवान शिव हंस दिए, एक संत थे, नदी के किनारे बैठे थे तो सामने नदी से एक बिच्छू बहता हुआ आ रहा था। बिच्छू बहता हुआ आ रहा था तो संत ने देखा कि बड़ा पीड़ित है, तो डूबने वाला है, मर जाएगा पानी में। संत के दया उमड़ गई, संत दयालु तो होते ही हैं, दया आई, संत ने उस बिच्छू को जल से निकाल करके हाथ पर रख लिया। अब बिच्छू का तो स्वभाव है डंक मारना, जैसे संत ने हाथ पर रखा बिच्छू ने डंक मारा और फिर पानी में गिर पड़ा। संत ने पुनः फिर जल से बाहर निकाला और हाथ पर रख लिया और फिर बिच्छू ने डंक मारा, फिर पानी में गिर पड़ा, फिर डंक मारा, फिर गिरा। ऐसे न जाने संत ने कितनी बार रक्षा करने की उसकी प्रयत्न किया और बिच्छू ने डंक मार करके नीचे गिर जाता था। पीछे में महाराज जी का शिष्य खड़ा था। महाराज जी के शिष्य ने कहा कि महाराज जी आप क्या कर रहे हैं? बोले क्या? बोले कि आपको ये बार बार डंक मारता है, बार बार आपको पीड़ा पहुंचाता है, पीड़ित करता है आपके शरीर को, और बार बार आप उसकी रक्षा करना चाहते हैं, रक्षा कर भी रहे हैं। महाराज जी ने पीछे मुड़ के पूछा अपने शिष्य से कि ये बताओ कि वो कौन है? बोले कि वो तो छोटा सा एक जीव है, जानवर है। महाराज जी ने कहा कि बेटा, एक छोटा सा जीव अपने धर्म का परित्याग नहीं कर रहा है, उसका मारना धर्म है। उसको ये भी पता नहीं कि मुझे मारने से इसको पीड़ा होता है, दर्द होता है, पेन होता है, ये भी पता नहीं है, उसका मारना ही धर्म है। यदि एक छोटा सा कीड़ा अपने धर्म का परित्याग नहीं करता है तो आप हम सब संत लोग अपने धर्म का परित्याग कैसे कर सकते हैं? संत महात्मा वैष्णव इस प्रकार से अपने जीवन के भगवान के पाद पद्मों में समर्पित करता है, इस तरह से गुरु के चरणों में दे देता है अपने जीवन को। यदि शरीर दीक्षित है, शरीर शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लिया है तो शरीर अपना है ही नहीं। दीक्षा के समय तो शरीर गुरु जी को दे देते हैं हम सब, तो गुरु जी जो जो शरीर के साथ नियम लगाते हैं, जिस नियम में बांध देते हैं, उसमें तो मान अपमान सम्मान इज्जत के कोई प्रश्न ही नहीं है। फिर यदि हमने ठीक से दे दिया है तो संत इस प्रकार से किसी विषय को समझा देता है, समझ लेता है। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी यदि संत के समक्ष आ जाए, उनका दर्शन कर ले, उनके पास में आकर के बैठ ले, न जाने कितने जन्मों के पाप नष्ट हो जाता है। कहीं कहीं आप लोग जाते हैं ना कथा करने, कीर्तन करने, तो छोटे छोटे बच्चों को लाके कहते हैं कि महाराज जी ऐसा कीजिए ना, हमारे बच्चे के सर पर हाथ रख दीजिए थोड़ा, या थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। संतों में भरोसा है, विश्वास है, प्रीति है, संतों के प्रति लोगों का लगाव है समाज में। संत आप मार्ग में जा रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, तीन प्रकार के व्यक्ति पाप करता है, कर्म से, मन से और वाणी से। और तीनों प्रकार के पाप को शांत करने के लिए, नष्ट करने के लिए संत के पास औषधि है, और कहीं औषधि है नहीं। आप किसी संत के पास गए और संत के पास जाने के बाद यदि संत को आपने देखा अथवा संत ने आपको देख लिया तो संत को देखने से, दर्शन करने से, अथवा संत ने आपको देखा उसके दर्शन करने से हमारे जीवन में जो मानसिक पाप है वो दर्शन करने से नष्ट हो जाता है। मन से जो हमने पाप किया, मन से किसी को नीचा ऊंचा किया है, वो मानसिक पाप नष्ट हो जाता है। यदि संत ने अपनी कृपा से दया करके आपने प्रणाम किया, आप झुक गए संत के पास, आपने प्रणाम कर लिया, शरण स्पर्श कर लिया, तो संत ने अपनी कृपा से यदि आपके सर पर हाथ रख दिया, सर पर यदि हाथ रख दिया तो आपके वाणी के पाप शांत हो जाता है। आपने जो वाणी से पाप किया है, शब्दों से जो पाप बना है उसको नष्ट कर देता है सर पर हाथ रखने से। बातचीत करने से मानसिक पाप नष्ट हो जाता है, सर पर हाथ रखने से आपके वाणी के पाप नष्ट हो जाता है। और यदि संत को आपने देखा, संत ने आपको देखा, संत ने आपके सर पर हाथ रख दिया और संत ने आपको स्पर्श कर दिया, किसी प्रकार से आपके शरीर पर थोपी लगा दिया, तो आपके काया के जो पाप है, जो शरीर से पाप हुआ है, वो नष्ट हो जाता है। इतनी महिमा है संतों की। एक बार एक दुष्ट व्यक्ति था और एक महान वैष्णव संत थे। उनका जीवन का व्रत था कि वो गंगा स्नान करने जाते थे, प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते थे। एक दिन गंगा स्नान करके आ रहे थे, उस दुष्ट व्यक्ति ने मन में कहा कि भाई संत का मैं दर्शन प्रतिदिन करता हूँ, इसको मैं क्रोध कभी नहीं देखता हूँ, ये गुस्सा नहीं करता है कभी, लगता है इसको क्रोध आता ही नहीं है, क्या करना चाहिए। तो संत स्नान करके आ रहे थे, संत पर उसने थू कर दिया। महाराज जी कुछ नहीं बोले, पुनः वहीं से लौट करके गंगा स्नान करने चले गए। फिर आ रहे थे, फिर थू किया उसने, फिर संत स्नान करके आए, फिर थू किया। ऐसे ऐसे 100 बार उसने स्नान किया, 100 बार उन्होंने थू किया उसमें, लेकिन संत ने कोई प्रतिकार, कोई बुराई किसी प्रकार के कुदृष्टि से नहीं देखा, थू करता रहा, स्नान करते रहे। जब 101 बार हुआ, स्नान करके लौट रहे थे, तो संत तो स्नान करके आ ही रहे थे, दुष्ट व्यक्ति ने जो उनको गुस्सा दिलाना चाहता था, उस व्यक्ति ने उनके चरणों में साष्टांग प्रणिपात हो गया, गिर पड़ा और कहा कि महाराज मैं बार दुष्ट व्यक्ति हूँ, बार पापी हूँ, बार कष्ट दिया आपको, बार दुख दिया आपको, बार बार मैंने थू किया, आपने बार बार स्नान किया, मेरे जैसा दुष्ट व्यक्ति संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। महाराज जी ने उसको अपने चरणों से उठा के गले लगा लिया। महाराज जी ने कहा नहीं नहीं, तुम तो बड़े संत हो, तुम्हारे जैसा तो महात्मा मिलेगा ही नहीं मुझे। बोले कैसे महाराज? बोले कि देखो मैं तो एक ही बार गंगा स्नान करके चला जाता, तुम्हारी कृपा से मैंने 101 बार स्नान किया, तू थू नहीं किया होता तो मैं 101 बार गंगा स्नान करने का मुझे फल नहीं मिलता। इस प्रकार से संत वैष्णव को अपने जीवन में धीरे धीरे, हम लोगों की आयु धीरे धीरे नष्ट हो रही है, निकल रहा है हाथ से, प्रति क्षण पल पल हमारा शरीर वृद्ध हो रहा है, क्षण क्षण हमारी इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो रही है। आज जो सुबह हमारे चेहरे में जो चमक थी अब नहीं है, दोपहर में बिल्कुल नहीं, शाम को और उदास हो जाएगा। जो अभी देखने की शक्ति थी आंखों में, सुनने की, देखने की कानों में, सुनने की शक्ति थी, वो थोड़ा कम हो गया है अभी। एक एक क्षण शरीर पर बुढ़ापा आक्रमण कर रहा है, बुढ़ापा हमें दबोच रहा है। जीवन से सावधान हो जाए, सावधानी पूर्वक, आप सब तो सब ब्रह्मचारी पूजनीय हैं, सभी आप लोग जितने सुनते हैं, आश्रम में रहते हैं, आप सब तो बहुत ही महान हैं, मैं तो केवल बैठ करके बात बता रहा हूँ और यादगारी कर रहा हूँ, लेकिन आप सब तो कर ही रहे हैं, जीवन के विशेष अपने जीवन के समय को समझ रहे हैं, समय को व्यतीत कर रहे हैं, समय को ठीक से बिता रहे हैं और बिताना भी चाहिए ठीक से। भगवान शिव के इस प्रसंग से आज यही समझ में आती है, यही पता लगता है प्रभुपाद जी के तात्पर्य से कि हमें भी उसका आचरण करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। यदि कोई भक्त किसी भक्त को कुछ बोल देता है तो शांत हो जाओ, यदि कोई अपमानित कर देता है तो जिह्वा को टेप से बिल्कुल बंद कर दो, नहीं नहीं आप बोल सकते हैं, आपका अधिकार है। जिसको आपने बोला है, अपमानित किया है, वही संत आपको दो मिनट में गले लगा लेगा। एक बार विनम्र होकर के तो हम देख लें, एक बार शरणागति लेकर के तो देखें, एक बार समर्पण तो हो जाए किसी संत वैष्णव गुरु के पाद पद्मों में। आप देखिए अपने जीवन में कितना बदलाव आता है, कितना परिवर्तन आ जाता है, संसार के सभी लोग आपसे प्रेम करना चालू कर देंगे। केवल विनम्र सूत्र जीवन में आ जाए, केवल जीवन का एक सूत्र एक नियम हो जाए, एक नियम में बांधने की आज से मैं विनम्र हो जाऊंगा। कोई बोले, कोई गाली दे, कोई सम्मान दे, इज्जत दे या कोई अपमानित कर दे, आज से बिल्कुल जिह्वा बंद। चलते फिरते लोग कहेंगे देखो उसके जैसा भाई, वो संत है, उसको उसको मत कुछ बोलो, अरे वो महान है, वो किसी से कुछ नहीं बोलता है। ऐसे जीवन में उतरना चाहिए, भगवान शिव का यही आज का शिक्षा है। भगवान शिव गृहस्थ हैं, उनके घर में अनेक व्हीकल अनेक गाड़ियां हैं, कोई आपस में ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, आपस में धर्म की चर्चा करते हैं, धर्म के प्रवर्तक हैं, धर्म की स्थापना करते हैं सभी और निरंतर भगवान के श्रवण कीर्तन करते हैं। पार्वती जी सुनती हैं और भगवान शिव निरंतर कथा करते हैं। वैसे आज हरियाली तीज भी है, भगवान को हरा भरा बहुत पसंद है। आज के दिन हरा भरा करने से, भगवान को प्रणाम करने से, नमस्कार करने से, खास करके अपने इंद्रियों के भगवान के पाद पद्मों में अर्पित करने से, भगवान को अपने आप को देने से कृष्ण प्रेम बढ़ता है। वैसे तो लोक में लोग कहते हैं कि शिव पार्वती जी का मिलन ही हरियाली तीज है, प्रेम प्रतिपादित करता ही हरियाली तीज। शिव पार्वती जी का यह दूसरा मिलन है। देखिए वहां भी शिव पार्वती वही सती जी पार्वती जी के रूप में हिमालय पुत्री बनी और भगवान शिव शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन महात्मा नारद जी बीच में मीडिएटर बनकर के शादी करा दिया। प्रेम को ही प्रेम जो बढ़ाता है, प्रीति जो बढ़ाता है, संसार के विषयों से जो दूर कर देता है, वही हरियाली तीज है। आज बड़ा सुंदर खास करके उत्तरी भारत में यूपी में बिहार में बड़ा भारी उत्सव होता है, इसका बढ़िया बढ़िया पकवान बनाते हैं लोग, अपने घरों के इर्द गिर्द में गोबर से घिराव करते हैं, पवित्र होकर के माताएं खूब हरा भरा पहन करके मंदिरों में जाती हैं, गीत गाती हैं, उसका एक ही लक्ष्य है कि भगवान को हम खुश कर लें। धन्यवाद आप सबका, आप सभी सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय हो, सभी ब्रह्मचारियों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, आप सबकी जय। श्री कृष्ण श्री प्रभुपाद जी महाराज की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की।